بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت زبیر ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ تابعی میں سے ہیں, تابعین میں سے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم سیدنا حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ ایک بڑی مصیبت, بڑا حادثہ, بڑی تکلیف چل رہی تھی, اس سلسلے کے اندر رہنمائی حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے. کون سی بڑی مصیبت؟ فشکونا الیہ ما نلقا من الحجاج, حجاج ابن یوسف کی طرف سے جو ایذا رسانیاں ہم کو ہو رہی تھی, جو مظالم ہمارے اوپر ہو رہے تھے, اس سلسلے میں ہم شکایت کرنے کے لیے حاضر ہوئے. دراصل حجاج نے بڑے مظالم کیے تھے, تو حضرت انس کو عرض کرنے گئے کہ حضرت حجاج بہت ظلم کر رہا ہے. معلوم ہوا کہ اس طرح کوئی بڑی آفت مصیبت آوے تو بڑوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے, جیسے کہ حضرت زبیر نے اپنے بڑے, یعنی اس زمانے میں اکابرین صحابہ, تو صحابہ موجود ہے تو کہا ان کی خدمت میں حاضر ہو کر کے مصیبت کیسے حل کرنے کی یہ طریقہ معلوم کرو. فقال, تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نصیحت کر کے فرمایا, اصبروا, صبر کرو بھائی, برداشت کرو, سہن کرو, جو ظلم و ظلم ہو رہے ہیں اس پر صبر کرو, اس لیے کہ آئندہ جو زمانے بھی تمہارے اوپر آئیں گے وہ اس وقت کے زمانے سے زیادہ برے آئیں گے. یعنی اس وقت کے اوپر جو خطرناک امیر تمہارے اوپر مسلط ہے, جو قتل کا ایک ماحول والا زمانہ ہے, تو آئندہ اس سے بھی بڑے ظالم امیر اور خطرناک زمانہ آئے گا, اسی لیے تم صبر کر کے رہو. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ کیا گارنٹی ہے, کیا ضمانت ہے کہ حجاج کے بعد آنے والا بادشاہ عادل ہوئے, کیا ضمانت اس کی؟ اس لیے کہ جتنا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے دور ہوتا چلا جائے گا, اتنا دنیا کے اندر مظالم بڑھتے چلے جائیں گے. کہ ابھی تو حضرات صحابہ موجود ہے اور یہ مظالم تم دیکھ رہے ہو, آئندہ جو دور آئے گا یہ تو حضور کے زمانے سے اور دور زمانہ آئے گا, تو اس وقت پر تو دنیا میں کیسے کیسے ظالم لوگ تم کو دیکھنے کو ملیں گے, اسی لیے صبر کرو اور صبر کر کے زندگی گزار لو. دیکھو جتنا زمانہ دور نبوت سے قریب ہوگا اتنا خیر ہوگی, اور جتنا زمانہ دور نبوت سے دور ہوگا اس قدر شر بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے بعض بزرگوں کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ باسی روٹی اور باسی پانی پسند کرتے تھے. کیوں؟ کہ وہ کچھ گھنٹے تو حضور کے زمانے سے قریب ہے, یعنی اس وقت صبح کے اندر اگر کسی کو روٹی کھانی ہے تو وہ کل کی باسی پسند کرے. کیوں؟ اس لیے کہ آج کے مقابلے میں کل بنی ہوئی روٹی حضور کے زمانے سے 24 گھنٹے قریب ہے نا, اس لیے گویا کہ دور نبوت سے وہ اتنی قریب ہو گئی, اور آج بنی ہوئی روٹی دور نبوت سے 24 گھنٹہ اور زیادہ دور ہوئی. یہ سلف کے اندر بہت سو کی عادت اور معمول تھا, باسی پانی ایسے حضور کو بھی پسند تھا اور باسی روٹی. تو گویا کہ زمانہ جتنا دور نبوت سے دور ہوتا چلا جائے گا اس قدر دنیا کے اندر شرف اتنے بڑھیں گے. اس لیے حضرت انس نے کہا کہ بھائی تم لوگ صبر کر کے رہو, اور پھر حضرت انس نے کیا فرمایا, سمعتہ من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بات میری اپنی ذاتی بات نہیں ہے بلکہ میں نے یہ بات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کہ آئندہ زمانوں کے اندر جو ہے بڑے ظالم لوگ آئیں گے. اب صبر کہاں تک کرنے کا, حتی تلقوا ربکم, یہاں تک کہ تمہاری موت آ جاوے وہاں تک صبر کرو. اب آگے کا نتیجہ یہاں نکال لینے کا کہ جب موت آ جائے گی تو ظالموں کا برا انجام اور مظلوموں کا اچھا انجام تم کو آخرت میں دیکھنے کو ملے گا, کہ موت کے بعد ظالم برے انجام میں ہوں گے اور مظلوم اچھے انجام کے اندر ہوں گے. اب یہاں حدیث شریف کے اوپر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث شریف کے اندر کیا معلوم ہوا, الا الذی بعدہ اشر منہ, کہ حجاج کے بعد جتنے بھی دور آئیں گے وہ بڑے بدترین دور آئیں گے. حالانکہ حجاج کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا جو بڑا پر امن عدل و انصاف کا زمانہ آیا, اور اس کے بعد امت کے اندر دوسرے بھی بہت سے عدل و انصاف والے بادشاہ پیدا ہوئے, امیر پیدا ہوئے, اور آخری زمانے میں حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کے اوپر عدل و انصاف, امن و امان پورے عالم میں عام ہو جائے گا, خیر ہی خیر ہو جائے گی. تو پھر کیسے مطلقاً فرمایا کہ اشر منہ بعدہ اشر منہ, سوال سمجھ میں آیا؟ تو اس سوال کے دو حل ذہن میں رکھو. پہلا حل یہ ذہن کے اندر رکھو کہ چند زمانے اگر مستثنا ہوتے ہیں تو اعتبار اکثر اور اغلب کا ہوا کرتا ہے, کہ بھئی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ یا اور کوئی عدل و انصاف والے بادشاہ کا زمانہ یا حضرت مہدی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ وہ عدل و انصاف کا, امن و امان کا, خیر اور بھلائی کا زمانہ ہوگا. یہ چند زمانے مستثنا ہوں گے, لیکن حکم جو لگایا جاتا ہے وہ عام اور اغلب احوال کے اوپر حکم لگایا جاتا ہے. دوسری ایک بات ذہن کے اندر رکھو, جب کسی چیز کی برائی سے ڈرانا مقصود ہوتا ہے تو وہاں تھوڑی بہت جو خیر ہوتی ہے اس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا ہے, بلکہ برائی ہی کے پہلو کو اجاگر کیا جاتا ہے. یہ عام جو ہے ایک تنبیہ کا انداز ہے, کسی چیز کے اندر خیر معمولی ہو برائی زیادہ ہو تو وہ معمولی خیر کو سامنے نہیں کیا جاتا, بلکہ اکثر جو شر اور برائی ہے اسی کو اجاگر کیا جاتا ہے تاکہ تنبو ہو جاوے. تو چونکہ بعد والے زمانوں کے اندر شر فتنے عام اور زیادہ ہونے والے ہیں اور خیر قلیل ہوگی, تو وہ شر کو اجاگر کیا اور خیر کو بیان نہیں فرمایا. جی یہ روایت سیدنا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے. اب آگے والا مضمون بیان کرنے سے پہلے حضرت حذیفہ ایک بات کہہ رہے ہیں, دیکھو کتنا پیارا انداز ہے. اللہ کی قسم آگے جو میں بات کرنے جا رہا ہوں میرے ساتھی صحابہ اس کو بھول گئے, یعنی وہ بات کوئی ایسی نہیں کہ حضور نے مجھے اکیلے کو بیان فرمائی ہو, پرائیویٹ میں, خلوت میں, تنہائی میں, خانگی میں بیان کی ہو. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کے سامنے عمومی انداز میں بات بیان فرمائی تھی, لیکن میرے ساتھی دوسرے صحابہ پتہ نہیں وہ بات بھول گئے. कि लोगों के सामने बयान नहीं कर रहे हैं, लोगों के सामने उसका तस्केरा नहीं कर रहे हैं, लोगों के सामने उसको जिक्र नहीं कर रहे हैं। दूसरे साहब और मैं अकेला ही बतलाता रहता हूं। दूसरी शक्ल अम तनासव, या ये कि भूल गए हो ऐसा जाहिर करते हैं। बाज मरतबा बहुत सी बातें हमको याद होती है लेकिन किसी मसलहत किसी हिकमत के पेशे नजर हम भूल गए हैं, ऐसा जाहिर करना पड़ता है, ऐसा ढोंग करना पड़ता है। तो हजरत उजेबा कहते हैं कि हुजूर ने बात तो उमूमी फरमाई दी लेकिन मेरे साथी साहबा लोगों के सामने बयान नहीं कर रहे हैं। या तो ऐसा हुआ कि वो भूल गए या किसी हिकमत और मसलहत के पेशे नजर वो भूल गए हो ऐसा लोगों के सामने जाहिर करते हैं। जैसे साथी लोग एक दूसरे को वादा कर लेते हैं, मैं तेरी दावत करूंगा, फिर दावत करना ना हो तो क्या करते हैं, वो भूल गए हो ऐसे अंदाज में रहते हैं। फिर वो बेचारा याद दिलाता है कि वो आपने एक मरतबा हदीस की किताबों के सामने वादा फरमाया था दावत का। अच्छा कब किया था, कब क्या, यानी जैसे कि भूल गए हो ऐसा अंदाज इख्तियार करते हैं। फिर फरमाते हैं वल्लाही मा तरक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन काइद फितनतिन इला अन तक्तज़ी तन्क़दियत दुनिया। काइद फितना का मतलब फितना परदाजी करने वाला रहनुमा, फितने को शुरू करने वाला लीडर का। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी फितना परदाज होंगे दुनिया के खत्म होने तक जिनके मानने वालों की तादाद जिसके साथियों की तादाद 300 या ज्यादा होगी, यबलुगु मन माहु तलातमिया, जिस फितने के काइद और रहनुमा और लीडर के साथी 300 या 300 से ज्यादा होंगे, इल्ला कद सम्माहु लना, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके नाम के साथ हमको बयान कर दिया। देखो माँ और इल्ला आता है तो हसर का माना निकलता है कि हुजूर ने जितने भी बड़े बड़े फितीन दुनिया के अंदर आने वाले हैं उन फितीनों का नाम, उनके बाप का नाम, उनके खानदान का नाम हुजूर ने पूरे तौर पर हमारे सामने बयान कर दिया। अब यहां चंद बातें समझने की है। पहली बात, कायदे फितना किसको कहते हैं? सीधा साधा मफहूम है फितनों के लीडर, फितनों के बानी, सीधा साधा मफहूम। दूसरा मफहूम, दीन इस्लाम के अंदर नई नई बिदअतें शुरू करने वाले। तीसरा मफहूम, दीन के नाम पर मुसलमानों में लड़ाई पैदा करने वाले। चौथा मफहूम, उम्मत के अंदर इफ्तिराक के जरिए इस्लाम की शान और शौकत को जख्मी करने वाले। ये चार किस्म के लोग, इस तरह के लोग फितने के काइद कहे जाते हैं। और आमतन जो काइद होते हैं ना बड़े काब से, वो छोटे काब से काइद हुआ करते हैं, अल कैद, हीले मकर करने वाले। यानी हुजूर के मुबारक दौर से लेकर कयामत तक जितने बड़े बड़े फितीन आने वाले हैं, लेकिन वो कैसे फितीन कि जिनके मुत्तबीईन, जिनकी पार्टी में कम से कम 300 या 300 से ज्यादा लोग होवे। देखो ये 300 की तादाद क्यों बयान की गई, मतलब है इतनी तादाद होवे कि जो इज्तिमाई तौर पर फितना बर्पा कर सके, इज्तिमाईयत के साथ कोई बड़ा फितना बर्पा कर सके। अब देखो अगर कोई इन्फिरादी फितना होता है तो उसका हंगामा कोई बड़ा नहीं हुआ करता, और आमतौर पर शुरा लिखते हैं कि 300 की तादाद एक मेयारी तादाद है, किसी फितीन के 300 से ज्यादा मुत्तबीईन हो तो कोई बड़ा फितना कहलाता नहीं है। लेकिन कोई फितीन बड़ा खड़ा हुआ, उसके मानने वाले 300 या 300 से ज्यादा हो गए तो समझ लो कि ये जो है बड़ा फितना अब दुनिया के अंदर फैलाएगा और उसका शर बड़ा आम होगा। तो गया कि इस तरह जिनके मानने वाले 300 या ज्यादा होए वो फितना आम होगा, फितना बढ़ेगा, फितना फैलेगा और लोगों को उसका जरर और नुकसान पहुंचेगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस फितीन का नाम लिया बाप का और कबीले का, मतलब कि उनका पूरा तआरुफ हुजूर ने करवा दिया, उनके बुरे औसाफ हुजूर ने बयान फरमा दिए। अब अंदाजा लगाओ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के यहां से जो इल्म दिया गया उसकी रोशनी में हुजूर ने बड़े बड़े फितीनों का तस्करा अपनी उम्मत के सामने कर दिया। इसकी एक मिसाल एक दूसरी हदीस में देखो, अदद की मिसाल। जैसे एक हदीस में हुजूर ने फरमाया कि मेरे बाद सलासून कज़्ज़ाबून, 30 झूठे मुद्दई आने नबूवत खड़े होंगे। अब मुद्दई नबूवत तो बरसाती मेंढक की तरह हर रोज खड़े होते हैं और हुजूर के मुबारक जमाने से लेकर अब तक में 30 लाख के करीब हो गए होंगे। फिर हुजूर ने क्यों फरमाया कि सलासून कज़्ज़ाबून, कि मेरी उम्मत में मेरे बाद 30 झूठे मुद्दईया ने नबूवत पैदा होंगे? तो उसकी वजह समझो, यानी बड़े बड़े झूठे मुद्दईया ने नबूवत, कि जिनकी झूठी नबूवत के मानने वाले लोग दुनिया में एक अच्छी खासी बड़ी तादाद में होंगे। बाकी छोटे छोटे मुद्दईया ने नबूवत तो हर रोज दुनिया में खड़े होंगे। तो इस तरह कोई बड़े फितीन को बतलाने के लिए हदीस में ऐसा आदत बयान किया गया। जी हजरत सौबान रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मेरी उम्मत के ऊपर गुमराह करने वाले लीडरों का बड़ा डर है। गीदड़ान लीडरान दोनों का वजन एक है ना, तो गुमराह करने वाले लीडरान जो गीदड़ से भी ज्यादा खतरनाक होंगे, ऐसों के बारे में मुझे बड़ा डर है। किसको कहते हैं इमामुद्दलाला अइम्मतुल मुदिल्लीन? नंबर एक उनका तारुफ, जो लोगों को अपने फैल या अकीदे या अपने कौल की इत्तेबा की तरफ बुलावे, जो लोगों को अपने जाती कौल, जाती फैल, जाती अकीदे की इत्तिबा की तरफ बुलावे, ये हैं अइम्मतुल मुदिल्लीन, यानी जिनको शरीयत से, कुरान से, दीन से, नबी से, वही से कोई लेना देना नहीं। हम जो अकीदे बतलावे वो मानो, हम जो बात कहे वो मानो, हम जो आमाल करे वो करो, ये हैं अइम्मतुल मुदिल्लीन, जिनको शरीयत और दीन से कोई ताल्लुक न हो। और याद रखो, गलत कियादत से उम्मत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। गलत गुमराह कायदीन, उससे उम्मत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इसलिए कि कायद जब गुमराह होता है तो उसकी गुमराही का असर पूरी कौम के ऊपर हुआ करता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों को गुमराह करने वाले लीडरान का मुझे मेरी उम्मत पर बहुत डर है। आगे इरशाद फरमाया, जब मेरी उम्मत के अंदर तलवार चल पड़ेगी तो कयामत तक वो तलवार रखी नहीं जाएगी, उठाई नहीं जाएगी उनसे। यानी एक मर्तबा जो तलवार निकली मुसलमानों में आपस में, आपस में जो तलवारें चलने लगी, जंग होने लगी, लड़ाइयां होने लगी, तो कयामत तक फिर ये लड़ाई बंद होने वाली नहीं है। कितनी बड़ी पेशींगोई फरमाई। यहां तलवार चल पड़ने का मतलब है आपस में जो मसाइल पेश आवे उसको शरीयत के बजाय जबर और तशद्दुद के जरिए हल करना। आपस में मसाइल तो पेश आते हैं, इख्तिलाफात तो पेश आते हैं, तो उसका बेहतरीन जरिया है कि शरीयत के जरिए हल करो। लेकिन शरीयत से हल नहीं करेंगे आपसी इख्तिलाफात, आपसी मसाइल को, बल्कि कैसे हल करेंगे? ताकत से, तशद्दुद से, तलवार से, हथियार से, मारा मारी से, मनी एंड मसल पावर से, उससे हल करने की लोग कोशिश करेंगे। यह है तलवार उठाए जाने का मतलब। यानी जब मेरी उम्मत के दरमियान आपस में लड़ाइयां शुरू हो जाएगी तो फिर कयामत तक ये लड़ाई बंद नहीं होगी। और सबसे पहले आपस में तलवार चली सैयदना हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अनहु पर। और जो हजरत उस्मान पर सबसे पहली तलवार चली तो आज तक उम्मत जो है उसके अंदर मुबतला है। फिर आपसी की लड़ाई और खाना जंगियां बंद नहीं हुई। देखो कोई चीज पैक होती है ना, पैक महफूज होती है, पैकिंग टूट जावे ने फिर हिफाजत खत्म हो जाती है। तो गोया कि एक मर्तबा ये तलवार बंद थी, पैक थी आपसी लड़ाई में, एक मर्तबा जो उसका पैकिंग निकल गया आपसी लड़ाई के मामले में और आपस में जो तलवार चली तो अब कयामत तक वो चलती रहेगी, अब वो बंद नहीं होगी। अब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिजा है कि हुजूर ने ये पेशीन गोई फरमाई और आज तक उम्मत भुगत रही है। आपस का कत्लो किताल, आपस की खून रेजी, आपस का जंग, आपस की मारा मारी। और अइमतुल मुदिल्लीन हमेशा अपनी गुमराहियों को फैलाने के लिए, अपनी लीडरशिप को बाकी रखने के लिए लोगों को लड़ाते रहते हैं आपस के अंदर। चलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सफीना इनका लकब है। ये हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजाद किए हुए गुलाम हैं। किसी सफर से वापसी में सब लोगों ने अपना सामान उन पर रखना शुरू कर दिया है। जैसे कि तलबा की जमात जाती है ना, तो फिर एक जो बेचारा भोला भाला सूफी साफी किस्म का हो तो सब लोग जब थक जाते हैं तो हर एक अपना ढेला सुभी जी उठा लीजिए ना, सुभी ये ले लेना, सारा बेचारा वो अकेला सबका बोझ लेकर के चलता है, ऐसा चलता रहता है साथियों में। तो सब लोगों ने अपना सामान इनके ऊपर रखना शुरू कर दिया। तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा कि ये तो सबका सामान उठा के लेके चल रहे, तो उसने फरमाया तुम तो सफीना हो गए। चूंकि उस जमाने के अंदर टेम्पो नहीं था, वरना हुजूर टेम्पो की तशबीह दे दे, जैसी सवारी उस दौर की उसके हिसाब से हुजूर ने मिसाल दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को समझाने के लिए सफीना की मिल, कि भाई ये तो सफीना बन गए कि जिस तरह कश्ती में सारा सामान लोड कर देते हैं, इस तरह तुमने अपना सारा सामान उनके ऊपर लोड कर दिया। अब सहाबा की शान क्या थी, हुजूर के दरबारे आली से जो मिल गया बस वो उनके लिए सबसे बड़ी इज्जत की चीज थी। अब ये सफीना के नाम से ही मशहूर हो गए, असली नाम तो इनका नसीम मनसिया हो गया और मशहूर हो गए वही सफीना के नाम से, चूंकि बारगाह रिसालत से इनको मिला इसलिए ये लकब दुनिया के अंदर चल पड़ा उनका। तो हजरत सफीना रदी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है, قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول मैंने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, अल खिलाफतु सलासून सनतन, अलिफ लाम है, मौरब बिल्लाम है, इसलिए मुराद लेने का कामिल खिलाफत अला नहजी नबुवत, यानी कामिल खिलाफत नबुवी तरीके की, नबुवत के तरीके की खिलाफत। और दूसरा मतलब लेने का ऐसी खिलाफत जो अल्लाह के यहां पसंदीदा हो, जो शरीयत पर अमल करे और अमल करवावे, जो शरीयत की इशाअत करे और शरीयत के मुताबिक निजामे हुकूमत कायम करे। الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر کے وہ مصداق ہو کہ حکومت کو دین قائم کرنے میں، عدل و انصاف امن و امان کو قائم کرنے میں استعمال کرے۔ ایسی خلافت کا میرے بعد 30 سال تک رہے گی और उसके बाद दुनिया में बादशाहत शुरू हो जाएगी, यानी उसमें मजालिम शुरू हो जाएंगे, इंसाफ में कमी आ जाएगी, दीन की इत्तिबा में कमी आ जाएगी, ऐसी बादशाहत दुनिया के अंदर शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी उनको खलीफा कहा जाता रहा, हालांकि असली और कामिल खिलाफत 30 साल, लेकिन बाद में आने वाली बादशाहते उसको भी लोग खलीफा कहते रहे, खुलफाए बनू अब्बास, खुलफाए बनू उमैया ये कहते रहे। ये जो उनको लकब दिया जाता रहा ये लुगवी एतबार से, इसलिए कि खलीफा किसको कहते हैं, जो आगे वालों का नाइब हो, जिसको हम लोग कहते हैं नाइब डेप्यूटी, तो आगे वाले का नाइब यानी आगे वाला अमीर चला गया, ये इसका खल्फ, फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन, ये उनके बाद में आकर के अमीर बना, इसलिए उनका लकब खलीफा रहा। और खलीफा बाद वालों को इसलिए भी कहा गया कि वो अगलों के जानशीन थे, तो लुगवी एतबार से, उर्फी एतबार से उनको खलीफा कहा गया। बाकी हकीकी और सच्ची खिलाफत वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद 30 साल तक रहेगी। अब हजरत सफीना जो है गिनवा रहे 30 साल को, लेकिन एक बात जहन में रखो, इस गिनती के अंदर उन्होंने कुसूर को छोड़ दिया है, और आपको मालूम है कि अरबी जबान में कसर को बहुत सी मरतबा छोड़ दिया जाता है, यानी बीच में जो टूटा हुआ आदद होता है उसको छोड़ दिया जाता है, तो कुसूर छोड़े हैं इन्होंने। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत 2 साल, हजरत उमर की खिलाफत 10 साल, हजरत उस्मान की खिलाफत 12 साल, हजरत अली की खिलाफत 6 साल, 28 और 2 30 हो गए 30 साल, वो टोटल गिन लो तो 30 साल, चारों खुलफाए राशिदीन के ऊपर खिलाफत राशिदा खत्म हो गए। लेकिन मुहक्किकीन कहते हैं कि यहां कुसूर को गिनो तो क्या तरतीब आएगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हों की खिलाफत 2 साल 4 महीने थी, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हों की खिलाफत 10 साल 6 महीने थी, हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हों की खिलाफत पूरे 12 साल नहीं थी, उसमें कुछ दिन कम थे, और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हों की खिलाफत 4 साल 9 महीने थी। एक और गिनती देखो, अब ये जो गिनती हम ले गए दूसरी तीसरी एक गिनती, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत 2 साल 3 महीने 9 रातें, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत 10 साल 6 महीने 5 रातें, हजरत उस्मान की खिलाफत 12 साल में 12 दिन कम, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हों की खिलाफत चार साल नौ महीने रही। अब इस गिनती के एतबार से अगर टोटल मिलाने जावे तो पांच महीने या छह महीने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत पर तीस साल में बाकी थे। पांच महीने या छह महीने की मुद्दत तीस साल पूरे होने में बाकी थे। तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के बाद हजरत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा बने और पांच साल पांच महीने या छह महीने उन्होंने खिलाफत संभाली और उसके बाद जो है वो अलग हो गए। कहने लगे कि मेरे नाना जान ने फरमाया था कि मेरे बाद कामिल खिलाफत तीस साल रहेगी, तीस साल पूरे हो गए, अब मुलुकियत और बादशाहत का दौर है, मैं हट जाता। वो हट गए और उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी अपनी खिलाफत से दस्तबरदार होकर के उम्मत के अंदर इज्तिमाईयत को इन्होंने बाकी रखा। और हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो के हक के अंदर उन्होंने बैत और खिलाफत का ऐलान कर दिया। चलो हमारी किताब है ज़ुहूर मेहदी कब कहां और किस तरह, उस किताब के अंदर इस हदीस के ऊपर हमने बहुत कुछ लिखा है, उसको जरा एक नजर देख लेना। उर्दू गुजराती हिंदी अंग्रेजी चारों जबान में वो अल्हम्दुलिल्लाह शाये हुई है, उसमें ये हदीस माँ जमी तशरीहात एक नजर देख लेना उसमें। जी जुल मुहरू, ये रिवायत हजरत हुजैफा रदी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है। कौल कहते हैं कि मैंने पूछा या रसूल अल्लाह अयकूनु बाद हाजल खैर शर्रुन। हाजर खैल का मतलब है हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक जमाना जिसमें ईमान और इस्लाम अपनी पूरी शान और शौकत के साथ दुनिया में, वो जमाना हाजल खैर। तो ये पूछ रहे हैं कि हुजूर क्या इस खैर और भलाई के जमाने के बाद कोई शर और बुराई का जमाना आएगा। फिर तशबीह देते हैं कमा कान कबलहू शर्रुन, जैसे कि इस खैर से पहले दुनिया में शर था, यानी हुजूर के मुबारक जमाने से पहले जाहिलियत का दौर था, कुफ्र शिर्क का दौर था, वो जमाना। यानी जैसे इस्लाम से पहले बुराई का जमाना था तो क्या इस्लाम के आने के बाद कोई शर का जमाना आएगा, भलाई बुराई का जमाना आएगा। قال نعم, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो ज़ुहूर इस्लाम का खैर का जमाना है उसके बाद बुराई का जमाना आएगा। कुल्तु फमल इस्मतु, तो मैंने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बुराई के जमाने में बचाव कैसे होगा, हिफाजत कैसे होगी, यानी जब वो शर और बुराई का जमाना आएगा तो हमारी हिफाजत और बचाव का सामान क्या होगा। قال السيف, तो बचाव का जरिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलवार, के तलवार ये बचाव का जरिया होगा। भाई तलवार तो खत्म करने का जरिया है, वो कैसे बचाव का जरिया होगा, समझो इस हदीस शरीफ के इस लफ्ज को। पहला मतलब ये बयान किया गया कि फितीन लोगों के साथ तलवार के जरिए से मुकाबला करना और तलवार से उनको खत्म कर देना, ये है तलवार के जरिए से हिफाजत का जरिया। यानी जो फितना करने वाले लोग होवे जमाने में, उनको जो है तलवार के जरिए से खत्म कर दो, इस तरीके से तुम्हारी हिफाजत हो जाएगी। दूसरा मतलब मुर्तदीन मुराद है, मुर्तदीन। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का मुबारक जमाना आया तो इर्तिदाद का फितना दुनिया के अंदर उठा, तो उस मुर्तदीन के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने किताल किया। हालांकि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसे बहादुर आदमी, वो राय देने लगे जैश उसामा को रवाना मत करो। हजरत उसामा का जो लश्कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्जुल वफात में तैयार किया था, रवाना किया था, वो अभी मदीना के करीब था और हुजूर का इंतकाल हो गया। तो हजरत उमर की राय क्या हुई कि अभी अभी हुजूर का विसाल हुआ है और दुश्मनों के मदीना पर हमले का खतरा है, लिहाजा हजरत उसामा के लश्कर को रोक दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु मजबूत इस्तेकामत के साथ, नहीं, हुजूर ने जो लश्कर तैयार किया वो रवाना हो के रहेगा। और आगे आने वाले जमाने ने ये चीज देख ली कि हजरत अबू बकर सिद्दीक का फैसला कितना सही साबित हुआ, इसलिए कि हजरत उसामा के लश्कर ने जाकर मुर्तदीन के साथ मुकाबला किया और मुर्तद लोगों के फितनों को दबा दिया और मुर्तद का फितना खत्म हो गया। देखो ये सब इस्लामी हुकूमत के उमूर है, ये हम लोग नहीं चालू कर दे कि गांव में कोई फितना खड़ा हो तो तलवार धारिया लेके दौड़े, ये हमारा काम नहीं है, ये तो पूरे एक निजाम का मसला है। इस चीज को यह जहन के अंदर रखना। कुल तो हजरत उज़ैफा रदी अल्लाह ताला नो सवाल करते हैं, वहल बाद सैफी बकियतुन, क्या तलवार के बाद भी कोई चीज बचेगी। इस जुमले को ध्यान से समझो, हजरत उज़ैफा के सवाल करने का मंशा क्या, क्या तलवार के बाद भी कोई चीज बाकी रहेगी, यानी क्या, यानी मुसलमान जब फितीन लोगों को, फितीनों की ताकतों को खत्म करने के लिए तलवार चलाएंगे, जैसा कि हुजूर ने बतलाया कि फितनों को खत्म करने के लिए, फितीनों को खत्म करने के लिए तलवार चलाओ, तो क्या मुसलमानों में इतनी ताकत बाकी रहेगी तलवार चलाने के बाद कि वो इज्तिमाईयत और दियानत के साथ हुकूमत इस्लामिया को कायम कर सके। यानी जब फितीनों को खत्म करने के लिए तलवार चलाएंगे और फितीनों को तलवार के जरिए खत्म कर दिया जाएगा, तो क्या फिर मुसलमानों में इतनी ताकत बाकी रहेगी कि मुसलमानों की अमानतदार, दियानतदार, इज्तिमाई हुकूमत कायम होवे। इसलिए कि वो तलवार तो फितीनों को खत्म करने में इस्तेमाल हो गई, अब अगर इज्तिमाई दियानत वाली हुकूमत कायम करनी हो तो ताकत रहेगी मुसलमानों में, ये सवाल किया हजरत उज़ैफा ने। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम, जी हाँ, बाकी रहेगी ऐसी ताकत। और वो ताकत कैसी रहेगी, तकुनु अमारतुन अला अक्ज़ाइन, ऐसे अमीर लोग रहेंगे जो फसादी होंगे, ऐसे लीडर और अमीर लोग होंगे जो फसादी होंगे। कज़ा, अक्ज़ा, कज़ा किसको कहते हैं, पानी, शराब वगैरह में कचरा गिर जावे, गंदगी गिर जावे, गर्दो गुबार गिर जावे, मैल गिर जावे, उसको अरबी में अक्ज़ा से ताबीर किया जाता है। तो क्या ऐसे अमीर लोग होंगे जो मैले होंगे, मैले गंदगी वाले होंगे, फसादी होंगे, तो गोया के उस जमाने के अंदर लोगों को ऐसे अमीरों को मानना पड़ेगा कि जो अमीर फसादी होंगे, दिल के मैले और दिल के बुरे होंगे, लेकिन क्या करे, मजबूरी में उनको अमीर और लीडर मानना पड़ेगा। जाहिर बात है कि जिसके दिल में मैल हो, गंदगी हो, जिसके अखलाक खराब हो, उसको कौन अमीर माने, कोई मानता नहीं है। लेकिन मजबूरी ऐसी होगी कि ऐसे गंदे लोगों को भी अमीर मानना पड़ेगा, इसलिए कि वो ताकत वाले होंगे, उनके पास मनी पैसे का पावर होगा या ताकत का पावर होगा, इसलिए आम लोगों को मजबूरन उनको अमीर मानना पड़ेगा। तो दिल चाहता नहीं है, दिल खुश नहीं है, फिर भी ऐसे गंदे मैले लोगों को अमीर मानना पड़ेगा। और दूसरा मतलब इस जुमले का ये है कि खुद अमारत के अंदर बिगाड़ होगा, यानी अमीर खुद नई नई बिदअत चालू करने वाले होंगे, अमीर खुद नए नई बुराइयां चालू करने वाले होंगे, लेकिन फिर भी उनको अमीर मजबूरी के दर्जे में मानना पड़ेगा। वहुदनतुन अला दखनिन, ये पहले ये लफ्ज गुजर गया है, माना क्या, और सुलह करनी पड़ेगी धोखा खयानत और निफाक के साथ, सुलह करनी पड़ेगी धोखा खयानत और निफाक के साथ। यानी बाज मर्तबा आदमी को सुलह करनी पड़ती है मजबूरी के अंदर, हालांकि वो सुलह में धोखा है, उस सुलह में खयानत है, उस सुलह में निफाक है, फिर भी मजबूरी के दर्जे के अंदर सुलह करनी पड़ेगी। इसलिए कि अगर आदमी सुलह ना करे और कहे कि नहीं मैं नहीं मानता इसको लीडर, मैं नहीं मानता इसको अमीर, तो एक नया फितना चालू हो जावे। इसलिए मजबूरी के दर्जे के अंदर सुलह करनी पड़ेगी, वरना उनकी पार्टी बड़ी है और हम दो चार लोग हैं, कहां उनका मुकाबला करने जाएंगे। कुल तु सुम्मा माजा, हजरत हुज़ैफ़ा रदी अल्लाह ताला नो कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा उसके बाद क्या हालात आएंगे। कौल सुम्मा यंशा दुआतुद्दलाल, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके बाद गुमराही की तरफ दावत देने वाले पैदा होंगे। हालांकि दावत देनी चाहिए खैर की, ईमान की, हिदायत की, लेकिन गुमराही की दावत देने वाले पैदा होंगे। ऐसे जमाने में क्या करने का, फइन कान लिल्लाहि फिल अर्दि खलीफतुन, जमीन के अंदर कोई अमीर हो, कोई हाकिम हो, तो उसकी बात चुपचाप मान लेने की, उसको चला लेने का। हम जानते हैं कि ये अमीर अमीर बनने के लायक नहीं है, ये कायद छोटे काप से नहीं छोटे काप से हैं, बड़े काप से नहीं छोटे काप से हैं, ये कायद ये लीडर गुमराह है फितीन है, फिर भी उसकी बात चुपचाप मान लेने की, लेकिन एक कैद लगाने की, शरीयत के खिलाफ ना होवे, शरीयत के खिलाफ ना होवे, क्योंकि शरीयत के खिलाफ तो किसी की बात मानी नहीं जाएगी, चाहे वो खलीफा और अमीर कैसा हो। जलद जहर का, तेरी पीठ के ऊपर सपाटे मारे, कोड़े मारे, यानी तुम्हारे ऊपर जुल्म करे। वह अखज माल माल का, तुम्हारा माल जबरदस्ती ले लेवे, तुम्हारा माल छीन लेवे, तुमको मारे सताए, तो भी ऐसे जालिमों की चुपचाप फअतिहू, उसकी इताअत कर लो, उसकी बात मान लो, ताकि ममलकत इस्लामिया के अंदर बदअमनी और दीन में इंतिशार पैदा न होवे। और साहबा ने ये किया, हज्जाज इब्ने यूसुफ जैसे जालिम को भी साहबा ने बर्दाश्त किया, सहन किया, इसलिए कि वो खड़े हो जाते तो ममलकत इस्लामिया के अंदर बदअमनी हो जाती और दीन के अंदर एक इंतिशार हो जाता, इसलिए उन्होंने फितने से बचाने के लिए सारे जुल्म को बर्दाश्त कर लिया। वह इल्ला, अगर ये भी तुझसे न हो सके कि ऐसे जालिम की इताअत करना तेरे बस में न हो, तो क्या करो, मर जाओ, तुम मर जाओ। मर जाओ का मतलब क्या है कि खलवत में जिंदगी गुजारो मौत तक, खलवत के अंदर जिंदगी गुजारो मौत तक। इसलिए फरमाया वह अंत आदुन अला जजली शजर अतिन, और तुम किसी दरख्त की जड़ के अंदर पनाह लेकर के जिंदगी गुजार लो, यानी खलवत में, तन्हाई में, जंगल में, किसी जगह जाकर के जिंदगी गुजार लो चुपचाप मौत तक, और उन जालिमों को सहन कर लो चुपचाप। कुल तो सुम्मा माजा, हजरत हुजैफा पूछते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा कि हुजूर उसके बाद कैसा जमाना आएगा। हजरत हुजैफा ने सब पूछ लिया कयामत तक का। अजीब वो सवालात करते थे, शुरू में रिवायत में आया ना कि दूसरे सहाबा इबादत की बात पूछते थे, मैं फितनों की बात पूछता था। हर तरह के सवाल करने वाले होते हैं आज के जमाने में भी मुफ्तियाने किराम से। तो हजरत हुजैफा ने कयामत तक आने वाली सारी बातें हुजूर को पूछ के उम्मत को बतला दी। देखो यहां कुल तो सुम्मा माजा के अंदर इशारा है इस बात की तरफ कि दीन और मिल्लत इस्लामिया के जवाल का सिलसिला जारी रहेगा। दीन का जवाल, मिल्लत इस्लामिया का जवाल बराबर चालू और जारी रहेगा। यहां तक कि क्या होगा, कौल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुम्मा यखरुजु दज्जाल, फिर दज्जाल निकल आएगा। वहां तक इस तरह के फितने और जुल्म दुनिया में जारी सारी रहेंगे दज्जाल निकलने तक, वहां तक ये फितने जारी रहेंगे। देखो दज्जाल समझो, आगे मुस्तकिल बाब आ रहा है, दिजला से मुश्तक है दज्जाल, दिजला। और दिजला के माने आते हैं धोखा देना, फरेब देना। और इस दुनिया में सबसे बड़ा धोखेबाज, सबसे बड़ा फरेबी वो दज्जाल होगा, इसीलिए उसको दज्जाल के नाम से पुकारते हैं। ये इसका नाम नहीं, इसका लकब है, इसका लकब है, उसका नाम नहीं है। तो चूंकि वो बहुत धोखे देगा, लोगों को बहुत बनावट करेगा, इसलिए उसको दज्जाल से ताबीर किया जाता है। और बास कहते हैं कि झूठ और बनावट की वजह से उसको दज्जाल कहा जाता है। और देखिए दज्जाल पैदा हो चुका है और कम से कम इसकी उम्र इस वक्त 1500 साल है, कम से कम। दज्जाल की उम्र इस वक्त कितनी, 1500 साल है कम से कम। इसलिए के हदीस में आगे पढ़ेंगे, इस उम्मत के एक सहाबी ने दज्जाल की मुलाकात की है, हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला ने दज्जाल से मुलाकात की। तो जब हजरत तमीम दारी ने मुलाकात की और उन्होंने पूरी कारगुजारी आके हुजूर को सुनाई कि मेरी कैसे मुलाकात हुई, कैसे हुई, और हुजूर ने उनकी कारगुजारी मस्जिद नबवी के मिंबर पर बैठकर बयान फरमाई, तो मालूम हुआ कि हजरत तमीम दारी के इस्लाम लाने से पहले वो मुलाकात करके आए थे, ईसाई थे जिस जमाने में। और उस जमाने का आज 1440 साल तो हो गए, तो कम से कम 1500 साल तो उम्र हो गई दज्जाल की। इसलिए वो कब पैदा हुआ वो तो अल्लाह ही जाने, पैदा हो चुका है और दुनिया के किसी जजीरे के ऊपर, आयरलैंड के ऊपर फरिश्तों ने उसको बांध करके कैद करके रखा है। अभी हमारी एक नई ताजी किताब आई है कयामत की निशानियां, उसमें पूरा दज्जाल के मुतालिक बयान है, वो देख लेना। तो उसमें आपको पूरी दज्जाल की तारीख, पैदाइश और हजरत तमीम दारी ने कैसे मुलाकात की वो पूरी तफसीलात उसमें मौजूद है। और आगे जब बाब आएगा तो वहां भी और तफसीलात आएगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर दज्जाल निकलेगा उसके बाद माहू नहरुन व नारुन, दज्जाल के साथ पानी की नहर भी होगी और आग का खजाना भी होगा। पानी की नहर और आग लेकर के निकलेगा।